मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 5 अगस्त 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य विषय के रूप में मित्रों, मैंने साहस पर बात करने का साहस किया है, यूं कह लीजिए कि निर्णय किया है, साहस किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैं साहस पर बात कर चुका हूं, जिस पर आप पहले भी बात कर चुके हों उस पर फिर बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़े से साहस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं साहस करने जा रहा हूं। दरअसल सच पूछिए तो आज का यह एपिसोड हमारे जो बहुत बहुत माने हुए, बहुत प्यारे और बहुत जो निर्भीक पत्रकार हैं रवीश जी, उनको समर्पित है। रवीश कुमार का नाम आप जानते हैं दोस्तों, जो NDTV में हैं और लगातार जो बहुत ही साहस के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे जो बातें रखते हैं वो बिल्कुल सामाजिक हित में होती हैं और उस वर्ग के हित में होती हैं जिनकी बातें दूसरा कोई उठाना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता। उनकी बातों को रखना और वह भी बिल्कुल सत्ता के विरोध में जाकर के सही सही बातें कहना, बड़े बेलाग तरीके से अपनी बातें कहना, बहुत ज्यादा साहस की मांग करता है। और आप लोगों ने 2-3 दिन पहले यह खबर पढ़ी होगी कि उनकी पत्रकारिता के लिए उन्हें मैगसेस अवार्ड देने की घोषणा की गई है। ये जो मैगसेस अवार्ड है, इसे आप एशिया महाद्वीप का नोबल पुरस्कार कह सकते हैं और इसकी मान्यता भी इसी रूप में है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से रवीश जी को इस सफलता के लिए, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए बहुत बहुत और बहुत बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही साथ आप सब की ओर से उनके इस साहस को सलाम भी करना चाहूंगा। तो मित्रों, आइए अब इस पृष्ठभूमि में हम थोड़े से साहस की बात करते हैं और हो सकता है कि मेरी बात में थोड़ा सा आपको एक नया रंग इस गुण का दिखाई पड़े। चर्चिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में वही भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत शब्द मेरे मुंह से इसलिए निकल गया कि वो भारत के प्रति बड़ी कठोर नीति रखा करते थे। खैर, तो मित्रों, चर्चिल ने एक बात कही थी कि आपके पास सारे गुण हो, बहुत से गुण हो, लेकिन अगर साहस का गुण नहीं है तो बाकी सारे गुण बेकार हैं, धरे के धरे रह जाते थे। यानी कि उन्होंने साहस के गुण को व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण माना था। मुझे लगता है कि कम से कम रवीश जी का जो जीवन अभी तक का रहा है, उसके आधार पर आज की जो युवा पीढ़ी है, हम भी उसमें शामिल हैं, साहस के तत्व को बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और सही मायने में उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत से मेल आते हैं और उन मेल में जो व्यक्त दर्द होता है उसे मैं समझता हूं। इस तरह के मेल होते हैं कि हम गांव से शहर आ गए हैं, महानगर में आ गए हैं और किस तरीके से ये जो महानगर का जीवन है ये आतंक कर रहा है और लोग भी, जो दूसरे लोग हैं जो नगरों में रह रहे हैं, जो महानगरों में रह रहे हैं, हमें थोड़ी नीची निगाहों से देखते हैं, हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, हमारे प्रति बड़ा उपेक्षित व्यवहार करते हैं। इस तरह के मेल मिलते हैं। आप रवीश जी के जीवन को जानने समझने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पर कुछ प्रोग्राम इस तरह के थे, लगभग 2-1 साल पहले की बात है, उन्हें मैंने देखा था। सच पूछे तो कोई भी स्टूडेंट, युवा, जब भी गांव से बड़े शहर में पहुंचता है, मान करके चलिए कि वह इस तरह के मनोवैज्ञानिक संकटों का सामना करने के लिए अभिशप्त है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। स्थान बदला है, हर स्थान की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी कमियां होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, अपने गुण होते हैं हर स्थान के। हम छोटे स्थान पर रहते हैं तो छोटे स्थान की जीवन पद्धति हमारी आदत बन जाती है। अब हम बड़े स्थान पर पहुंच गए हैं, किसी महानगर में पहुंच गए हैं, हमें लगता है कि यह महानगर का दोष है जो हमें डरा रहा है। नहीं मित्रों, महानगर का वो चरित्र ही है, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाला शहर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और जब हम उन बिल्डिंग्स के सामने खड़े होते हैं तो अपने को एकदम बौना महसूस करते हैं। बाप रे, इतनी ऊंची बिल्डिंग। हमारे दिमाग में यह बात आती है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी कितने बड़े होंगे, तो वहां के लोगों से जब हम अपनी तुलना करते हैं अपने लिए बौनेपन का एहसास करने लगते हैं। वहां की चमचमाती हुई चौड़ी चौड़ी तेज गति से चलती हुई गाड़ियां, भागती हुई गाड़ियां हमें परेशान करने लगती हैं, क्योंकि गांव का हमारा जो जीवन था वो थमा हुआ जीवन था। थमा हुआ ना कहे तो धीमा जीवन तो था ही, तो हमारी आदत पड़ गई है धीमे जीवन की। हमारी चेतना उस धीमेपन को ही स्वीकार कर पाती है, और अब हमें तेजी को स्वीकार करना पड़ रहा है। हमें लगता है कि हम इस तेजी में कैसे शामिल हो सकेंगे, हम तो इतना नहीं दौड़ सकते, और अगर हम इतना नहीं दौड़ सकते तो सीधी सी बात है कि हम तो पिछड़ जाएंगे। तो हम यहां बढ़ने के लिए आए हैं, और ऐसा लगने लगता है यहां के जीवन पद्धतियों को देख करके कि नहीं, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, और फिर हमें अपने निर्णय पर अफसोस होने लगता है और लगता है कि अब लौट चलें, हम अपने गांव को वापस चले जाएं, अपनी पुरानी जगह में लौट जाएं, वहां कितना सुकून का जीवन था, क्यों फालतू के हमने अपने आप को इस झंझट में डाल दिया है। अब आपके सामने मित्रों ये संकट है, और रवीश जी के जीवन को आप जानने और देखने की कोशिश कीजिए। मैं उन्हीं के जीवन से लेकर के आपके सामने ये बातें रख रहा हूं कि जब वो दफ्तर में गए एनडीटीवी के, तो उन्हें ऐसा लगा कि बाप रे, ये मैं कहां आ गया, यहां सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, मुझे तो आती नहीं है, यहां के लोग ऐसे हैं, मैं यहां क्या कर पाऊंगा। ये सारे मनोवैज्ञानिक संकटों से वो गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या। अगर वो लौट गए होते तो आज हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। चलिए हम बात करें या न करें, लेकिन उनका जो योगदान समाज को है, समाज उनके इस योगदान से वंचित रह गया होता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बात करना न करना तो एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये तो सामाजिक योगदान तो सार्वजनिक मामला है, उनसे वंचित हम रह गए होते। तो वो कौन सा तत्व था, वो कौन सा गुण था जिसकी वजह से रवीश आज रवीश है। नाम तो उनका तब भी होता, लेकिन अब तो रवीश का नाम आप एक तरह से कह लीजिए कि कहीं ना कहीं विशेषण बन चुका है। आप किसी पत्रकार को कह सकते हैं जो बहुत साहसी है, जो बहुत बेबाक है, बहुत निर्भीक है, यार ज्यादा रवीश बनने की कोशिश मत करो, या आप ये भी कह सकते हैं अच्छा लग रहा है कि तुम रवीश बनने जा रहे हो, मतलब एक विशेषण बन चुका है। तो कौन सा गुण था दोस्तों, जब आप इस पर बहुत विचार करेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे, और सच पूछे तो रवीश जी को किनारे कर दीजिए, आप अपनी समस्याओं के बारे में विचार कीजिए, समस्याएं बिल्कुल एक जैसी ही हैं, ये मत समझिए कि उनकी समस्याएं कुछ बहुत दूसरी थी, नो, थोड़ी बहुत अंतर से हो सकती है कि वो डिफर कर रही हो, अदरवाइज समस्याएं लगभग एक ही होती हैं। वो कौन सा गुण था जिसके कारण वो इन सब चीजों से उबर सके, इन सब का सामना कर सके। अंतर्निहित जो गुण है, जो बहुत गहरे में होता है मित्रों, वह गुण था मूलतः साहस का गुण। होता क्या है, कुछ नहीं, साहस केवल किसी एक स्थान पर या किसी एक समय में अपेक्षाकृत अधिक समय तक टिके रहना है, बस। बाकी लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो साहसी होता है वो भागता नहीं है, वो उसी पर टिक जाता है, थोड़ी देर टिकता है, और जब थोड़ी देर आप टिक जाएंगे तो याद रखिए धीरे धीरे आपकी चेतना उसको स्वीकार करने लायक बन जाएगी, आपकी चेतना का विकास होगा, आपकी चेतना मजबूत होगी। अभी तक आपकी चेतना जिस वातावरण में थी उसके अनुकूल थी, अब आप जिस वातावरण में आ गए हैं उसके अनुकूल चेतना बन जाएगी, तो उसे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, और मौका देने के लिए जिस गुण की जरूरत होती है मित्रों, वह होता है साहस का गुण। तो दोस्तों, साहस के इन शब्दों के साथ ही एक बार फिर से मैं आप सभी की ओर से रवीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से, आप सबकी ओर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें और शक्ति दे, ताकि वे अपनी बात को और भी निर्भीकता के साथ सामाजिक हित में रख सकें। और नई पीढ़ी के लिए संदेश है कि वह उनके जीवन से, जो बिल्कुल एक जीवंत प्रमाण के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, अपने लिए कुछ संदेश हासिल करें। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।